नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। चीन में काम करने वाली अमेरिकी कंपनियां प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा अन्य मुद्दों पर अमेरिका के साथ तनाव को अपने कारोबार के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में देखती हैं। मंगलवार को जारी एक सर्वेक्षण में ये बात सामने आई। शंघाई में अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक सर्वेक्षण के अनुसार निवेश के लिए विदेशी गंतव्य के तौर पर चीन की साख में निरंतर गिरावट आ रही है। हालांकि सर्वेक्षण में शामिल 325 कंपनियों में से दो तिहाई ने कहा कि उनकी चीन को लेकर रणनीति को बदलने की तत्काल कोई योजना नहीं है। सर्वेक्षण में शामिल 5 में से एक से अधिक कंपनियों ने कहा कि वो इस साल चीन में अपना निवेश कम कर रही हैं, जिसकी मुख्य वजह अमेरिका चीन व्यापार संबंधों में अनिश्चितता और चीन में धीमी वृद्धि का अनुमान है। कुल मिलाकर सर्वेक्षण से पता चला कि पिछले साल की तुलना में धारणा और अधिक खराब हुई है। तब चीन की कोविड वैश्विक महामारी को लेकर चीन की कड़ी नीतियों का असर इन कंपनियों पर पड़ा था। सर्वेक्षण में सामने आया कि इस तरह के व्यवधान प्रमुख वजह थे, जिनका हवाला कंपनियों ने चीन के बाहर अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए दिया। रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल ने नोमुरा सहित एंकर निवेशकों से 318.5 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी का IPO बुधवार को खुलेगा। सिग्नेचर ग्लोबल ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि सार्वजनिक निर्गम में AI के हिस्से के तहत 82,72,700 इक्विटी शेयर को अभिदान मिला। नोमुरा ट्रस्ट एंड बैंकिंग कंपनी लिमिटेड ने सबसे अधिक 18,70,094 शेयर खरीदे। कंपनी ने अपने 730 करोड़ रुपए के IPO के लिए प्रति शेयर 366 से 385 रुपए का मूल्य दायरा तय किया है। IPO 20 सितंबर को खुलेगा और 22 सितंबर को बंद होगा। IPO में 603 करोड़ रुपए नए शेयर और बिक्री पेशकश के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के 127 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर शामिल हैं। NCLT ने कर्जदाता डाइचे बैंक की अर्जी मंजूरी करते हुए सोमवार को ओवरनाइट एक्सप्रेस के परिसमापन का आदेश दे दिया। डाइचे बैंक ने कर्ज में डूबी कंपनी ओवरनाइट एक्सप्रेस के निलंबित निदेशक मंडल के एक सदस्य की तरफ से पेश कर्ज समाधान प्रस्ताव का विरोध किया था। उनके अनुरोध को NCLT ने स्वीकार करते हुए कंपनी के परिसमापन का आदेश दे दिया। ओवरनाइट एक्सप्रेस पर कुल 10.82 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज था। इनमें से 6 करोड़ रुपए का बकाया डॉयचे बैंक का था। हालांकि दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता में कर्जदार कॉरपोरेट फर्म के प्रवर्तकों को कर्ज समाधान प्रस्ताव रखने से प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन MSME को इस नियम से छूट मिली हुई है। इसी प्रावधान का हवाला देते हुए ओवरनाइट एक्सप्रेस के एक प्रवर्तक ने समाधान योजना पेश की थी, लेकिन NCLT की दो सदस्यीय पीठ ने इसे खारिज करते हुए कहा कि कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के 330 से अधिक दिन बीत चुके हैं। मुंबई हवाई अड्डे पर अगस्त में यात्रियों की संख्या सालाना आधार पर 32% बढ़कर 42 लाख हो गई है। हवाई अड्डा प्रशासन ने सोमवार को ये जानकारी दी। इस हवाई अड्डे पर अगस्त 2022 में आने वाले यात्रियों की संख्या 32 लाख थी। हवाई अड्डे ने कहा कि कोविड पूर्व के समय से तुलना की जाए तो यात्रियों की संख्या में अगस्त में 108% वृद्धि हुई है। हवाई अड्डा परिचालक ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अगस्त 2023 में लगभग 43.2 लाख यात्रियों का आवागमन हुआ, जो अगस्त 2022 के 32 लाख यात्रियों से 32% ज़्यादा है। उसने कहा कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या ही 33% वृद्धि के साथ 11 लाख से ज़्यादा रही, जबकि पिछले साल अगस्त में ये 8.4 लाख थी। भारत की प्रमुख निजी एयरलाइन विस्तार 1 नवंबर से काठमांडू दिल्ली हांगकांग की दो तरफा उड़ान सेवा शुरू करेगी। एयरलाइन द्वारा जारी बयान के अनुसार विस्तार ने 1 नवंबर से हांगकांग को अपने वैश्विक उड़ान नेटवर्क में जोड़ा है। बयान में कहा गया है, एयरलाइन इस मार्ग के लिए A320 छोटे आकार के विमान तैनात करेगी और यात्री मोबाइल ऐप, वेबसाइट और ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं। विस्तार 13 फरवरी से काठमांडू और दिल्ली के बीच उड़ान भर रही है। नेपाल में एयरलाइन के कार्यकारी अधिकारी प्रसन्न अधिकारी ने PTI भाषा को बताया, विस्तारा 1 नवंबर से काठमांडू दिल्ली हांगकांग दो तरफा उड़ान शुरू करने जा रही है। अधिकारी के अनुसार ये हवाई सेवा उन यात्रियों के लिए फायदेमंद होगी जो दिल्ली के रास्ते काठमांडू से हांगकांग और दिल्ली के रास्ते हांगकांग से काठमांडू की यात्रा करना चाहते हैं। प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी कंपनी बायोकॉन लिमिटेड ने पीटर बैंस को समूह CEO नियुक्त किया है। कंपनी ने सोमवार को ये घोषणा की। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि बैंस ने बायोकॉन के समूह CEO का कार्यकारी पद संभालने के लिए कंपनी के बोर्ड में गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने कहा, इस प्रकार वो कंपनी की ऑडिट समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और हितधारक संबंध समिति के सदस्य भी नहीं रहे हैं। बायोकॉन ने कहा कि उनके पास निदेशक मंडल, सीईओ और वरिष्ठ कॉरपोरेट स्तर सहित रणनीतिक और परिचालन नेतृत्व का 30 साल से अधिक का वैश्विक अनुभव है। उन्होंने 2010 से लगभग 6 साल तक कंपनी के अनुषंगी सिनजीन इंटरनेशनल लिमिटेड के सीईओ और निदेशक मंडल में कार्य किया है। उनको कंपनी की सफल सार्वजनिक सूचीबद्धता का भी श्रेय जाता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।